नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Art 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। क्लीन आर्किटेक्चर रॉबर्ट सी मार्टिन की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिजाइन पर केंद्रित पुस्तक है। यह किसी एक भाषा, फ्रेमवर्क या तैयार कोड संरचना की विधि नहीं देती, बल्कि ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करती है जिनसे बदलती आवश्यकताओं के बीच सॉफ्टवेयर को समझने, जांचने और संशोधित करने योग्य रखा जा सके। पुस्तक का मुख्य सरोकार यह है कि व्यवसाय के मूल नियम डेटाबेस, यूजर इंटरफेस, वेब फ्रेमवर्क और बाहरी सेवाओं जैसे तकनीकी विवरणों के अधीन न हो। मार्टिन सॉलिड सिद्धांतों, कंपोनेंट संरचना, निर्भरता प्रबंधन और स्पष्ट सीमाओं के माध्यम से इस विचार को विकसित करते हैं। उनका तर्क है कि आर्किटेक्चर का मूल्य केवल सिस्टम को पहली बार चलाने में नहीं, बल्कि उसके विकास, परिनियोजन, संचालन और विशेषकर दीर्घकालिक रखरखाव की मानवीय लागत घटाने में है। पुस्तक का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अनुशासनात्मक और मानकवादी है, इसलिए इसे व्यावहारिक नियमों की सूची के बजाय निर्णय लेने की वास्तुशिल्पीय कसौटी के रूप में पढ़ना अधिक उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, निर्भरता नियम से व्यवसाय नियमों को तकनीकी विवरणों से स्वतंत्र रखना। पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत निर्भरता नियम है, जिसके अनुसार स्रोत कोड की निर्भरताएं हमेशा भीतर की ओर जानी चाहिए। भीतरी परतों में एंटरप्राइज व्यवसाय नियम और अनुप्रयोग के उपयोग मामले रहते हैं, जबकि बाहरी परतों में यूजर इंटरफेस, डेटाबेस, वेब उपकरण और फ्रेमवर्क जैसी चीजें आती है। इसका अर्थ डेटाबेस हटाना या फ्रेमवर्क से बचना नहीं है, अर्थ यह है कि मूल व्यवसाय नीति को इन विकल्पों की जानकारी ना हो। उदाहरण के लिए, किसी उपयोग मामले को ग्राहक जानकारी संग्रहित करनी है तो वह किसी विशेष डेटाबेस लाइब्रेरी को सीधे ना बुलाए। वह अपने आवश्यक संचालन को एक अमूर्त इंटरफेस के रूप में परिभाषित करे जिसका कार्यान्वयन बाहरी स्तर पर किया जाए। निर्भरता उलटने से डेटाबेस वाला भाग उपयोग मामले के नियमों के अनुकूल बनता है, उल्टा नहीं। यह व्यवस्था परीक्षण में भी उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक नेटवर्क या डेटाबेस के बिना विकल्पी कार्यान्वयन लगाए जा सकते हैं। मार्टिन का बड़ा बिंदु यह है कि फ्रेमवर्क और डेटाबेस उपयोगी साधन है, लेकिन वे उत्पाद का स्थायी केंद्र नहीं है। जब कोई बाहरी तकनीक बदले, तब प्रभाव सीमित रखने के लिए कोड की दिशा और सीमाएं पहले से सोची जानी चाहिए। दूसरा, सीमाएं और इंटरफेस बदलाव की लागत को नियंत्रित करते हैं। क्लीन आर्किटेक्चर में सीमा का अर्थ केवल अलग फोल्डर, पैकेज या परत बना देना नहीं है। सीमा उस जगह को चिन्हित करती है जहां दो हिस्सों के बदलने की गति, उद्देश्य या तकनीकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं। पुस्तक बताती है कि सभी संभावित विभाजनों को शुरू में कठोर बनाना जरूरी नहीं। यदि दो हिस्सों के स्वतंत्र रूप से बदलने की वास्तविक संभावना है, तब उनके बीच स्पष्ट इंटरफेस और निर्भरता नियंत्रण उपयोगी होता है। यह दृष्टि अनावश्यक अमूर्तन से भी बचाती है। किसी सीमा को साधारण फंक्शन कॉल, अलग मॉड्यूल, प्लगइन, प्रक्रिया या अलग परिनियोज्य इकाई के रूप में लागू किया जा सकता है। चयन उस बदलाव की लागत और स्वतंत्रता की जरूरत पर निर्भर है। सीमाओं का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यूजर इंटरफेस बदलने से उपयोग मामलों के नियम ना बदले, या भंडारण तकनीक बदलने से व्यवसाय नीति फिर से ना लिखनी पड़े। पुस्तक सीमा पार करने वाले डेटा को सरल संरचनाओं में रखने की सलाह देती है, ताकि किसी फ्रेमवर्क या बाहरी मॉडल की भाषा भीतर तक न फैले। इस तरह सीमा केवल संगठनात्मक चित्र नहीं रहती, वह परीक्षण, विकल्पी कार्यान्वयन और क्रमिक तकनीकी बदलाव के लिए एक व्यावहारिक निवेश बनती है। तीसरा, सॉलिड सिद्धांतों को कक्षा स्तर से आर्किटेक्चर स्तर तक ले जाना। मार्टिन सॉलिड सिद्धांतों को केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कक्षा डिजाइन सलाह के रूप में नहीं रखते। वे दिखाते हैं कि इन्हीं सिद्धांतों का प्रभाव कंपोनेंटों और पूरे सिस्टम की संरचना तक जाता है। एकल जिम्मेदारी सिद्धांत यह पूछने में मदद करता है कि किस उपयोगकर्ता समूह या बदलाव के कारण किसी मॉड्यूल को बदलना पड़ेगा। खुला बंद सिद्धांत स्थिर नीतियों को ऐसे विस्तार बिंदु देने की दिशा देता है जहां नई क्षमता जोड़ी जा सके बिना मूल नियमों को बार बार तोड़े। लिस्कोव प्रतिस्थापन, इंटरफेस पृथककरण और निर्भरता उलटना यह सुनिश्चित करते हैं कि अमूर्तन वास्तव में ग्राहकों की जरूरत के अनुसार हो, केवल विरासत की सुविधा के लिए नहीं। विशेष रूप से निर्भरता उलटना आर्किटेक्चर में निर्णायक है, क्योंकि उच्च स्तर की नीति को निम्न स्तर की तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर होने से रोकता है। पुस्तक कंपोनेंट के भीतर सामंजस्य और कंपोनेंटों के बीच युग्मन पर भी ध्यान देती है। जो चीजें एक साथ बदलती है, उन्हें साथ रखने और अनावश्यक निर्भरताएं घटाने से परिनियोजन तथा रखरखाव आसान हो सकता है। फिर भी इन सिद्धांतों को यांत्रिक नियम नहीं मानना चाहिए। उनका मूल्य बदलाव के स्रोत पहचान कर ऐसी संरचना चुनने में है जो भविष्य के संशोधनों को स्थानीय रखे। चौथा, यूजर इंटरफेस। डेटाबेस और फ्रेमवर्क को बाहरी विवरण मानने का तर्क पुस्तक का एक जानबूझकर चुनौतीपूर्ण दावा है कि वेब डेटाबेस और फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर का केंद्र नहीं। विवरण है, इस कथन का आशय उनके महत्व को नकारना नहीं है। वे सिस्टम चलाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन वे उस व्यावसायिक समस्या की नीति नहीं बताते जिसे सॉफ्टवेयर हल कर रहा है। यदि परियोजना की मुख्य संरचना किसी वेब फ्रेमवर्क के नियंत्रक, किसी डेटाबेस की तालिकाओं या किसी विक्रेता की लाइब्रेरी के इर्द गिर्द बनाई जाती है, तो वह तकनीकी विकल्प व्यवसाय नियमों में फैल सकता है। परिणाम स्वरूप बदलाव महंगा और परीक्षण कठिन हो सकता है। मार्टिन उपयोग मामलों को केंद्र में रखने की बात करते हैं। इन उपयोग मामलों के इनपुट और आउटपुट स्पष्ट हों और प्रस्तुति या भंडारण की विशिष्ट शैली उनसे बाहर रहे। उदाहरणतः स्क्रीन के लिए तैयार किया गया डेटा मॉडल सीधे उपयोग मामले का आंतरिक मॉडल नहीं बनना चाहिए। इनके बीच अनुवादक संरचनाएं होने से दोनों पक्ष स्वतंत्र रह सकते हैं। इस दृष्टि से फ्रेमवर्क उपयोग किया जाता है, पर उसके जीवन चक्र, एनोटेशन या डेटा प्रकारों को पूरे कोडबेस की भाषा नहीं बनने दिया जाता। यह अनुशासन आरंभ में कुछ अतिरिक्त संरचना मांगता है, किंतु तकनीकी प्रतिस्थापन और स्वचालित परीक्षण को अधिक नियंत्रित बनाता है। अंत में आर्किटेक्ट की भूमिका और रखरखाव लागत को घटाने की कसौटी। क्लीन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट को केवल चित्र बनाने वाला या तकनीकी निर्णयों से दूर प्रबंधक नहीं मानती। मार्टिन के अनुसार आर्किटेक्ट मूलतः प्रोग्रामर रहता है और उसका काम विकास दल के लिए सही विकल्प खुले रखना है। अच्छा आर्किटेक्चर ऐसे निर्णयों को देर से लेने देता है जो वास्तव में विवरण है, जैसे किसी विशेष डेटाबेस, वेब वितरण शैली या बाहरी ढांचे का चयन। इससे टीम पहले उपयोग मामलों और व्यवसाय नियमों की स्पष्टता पर काम कर सकती है। पुस्तक आर्किटेक्चर की सफलता को इस कसौटी पर लगती है कि आवश्यक सिस्टम को बनाने और बनाए रखने में कितने मानवीय संसाधन लगते हैं। यह दृष्टि उस आम भ्रम का विरोध करती है कि जल्दी प्रारंभिक डिलीवरी ही गति है। यदि असंगठित निर्भरताएं हर नए परिवर्तन को कई हिस्सों में फैलाती हैं, तो शुरुआती बचत बाद में रखरखाव लागत बन जाती है। साथ ही पुस्तक परिनियोजन, संचालन और विकास को अलग जीवन चक्र संबंधी चिंताएं मानती है। संरचना इतनी लचीली हो कि इन्हें जरूरत के अनुसार बदला जा सके। व्यावहारिक रूप में इसका अर्थ हर छोटे अनुप्रयोग पर भारी पर्दे थोपना नहीं है। वास्तविक जोखिम टीम का आकार और अपेक्षित बदलाव देखकर सीमाएं लागू करना ही इस विचार का परिपक्व उपयोग है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन अनुभवी डेवलपर्स, तकनीकी लीडरों, सिस्टम डिजाइनरों और उभरते आर्किटेक्टों के लिए सबसे उपयोगी है जो केवल साफ कक्षाएं लिखने से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम की परिवर्तनशीलता समझना चाहते हैं। जिन टीमों को डेटाबेस केंद्रित कोड, फ्रेमवर्क से अत्यधिक बंधी संरचना, कठिन परीक्षण या बढ़ते तकनीकी ऋण की समस्या है, उन्हें इसमें निर्णयों को परखने के लिए ठोस वैचारिक भाषा मिलती है। पाठक सीखता है कि किस चीज को नीति मानना है, किसे विवरण, कहां सीमा बनानी है और निर्भरताओं की दिशा क्यों महत्वपूर्ण है। इसका लाभ किसी तैयार टेम्पलेट की नकल में नहीं, बल्कि हर परियोजना में बदलाव के संभावित स्रोतों को पहचान कर अनुपातिक संरचना बनाने में है। समान विषय की पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह पैटर्नों या किसी एक तकनीकी स्टैक की सूची से अधिक आर्किटेक्चर को दीर्घकालिक आर्थिक और मानवीय जिम्मेदारी के रूप में रखती है। सॉलिड कंपोनेंट सिद्धांत और उपयोग केस केंद्रित डिजाइन को एक ही तर्क में जोड़ना इसकी प्रमुख शक्ति है। इसकी सीमाएं भी ध्यान रखने योग्य है। उदाहरण प्रायः वैचारिक है और आधुनिक क्लाउड नेटिव या माइक्रोसर्विस संदर्भों के लिए सीधे कार्यान्वयन निर्देश सीमित है। इसका स्वर कई जगह निर्णायक है, इसलिए इसे अपरिवर्तनीय नियम पुस्तिका नहीं समझना चाहिए। फिर भी तकनीक बदलने पर भी टिकने वाले सिद्धांतों, विशेषकर सीमा और निर्भरता प्रबंधन के कारण यह सॉफ्टवेयर संरचना पर एक प्रभावशाली आधारभूत अध्ययन बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, रॉबर्ट सी मार्टिन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।